समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं एक बार फिर लेकर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा। कार्यक्रम में होंगे अब तक के मुख्य समाचार, साथ ही चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
हेलो आकर्षिता। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट आकर्षिता। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ऑफ द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Jamaican counterpart Dr. Andrew Holness in New Delhi, says India ready to share its experiences with Jamaica in areas of biofuel, innovation, health, education and agriculture.
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक 56.01% से अधिक मतदान दर्ज।
Campaigning intensifies for assembly elections in Haryana.
इसराइल द्वारा दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमले शुरू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा।
एंड इन क्रिकेट, इंडिया क्लीन स्वीप 2-मैच टेस्ट सीरीज डिफीटिंग बांग्लादेश बाय 7 विकेट्स इन कानपुर।
और पेरू में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश मानी ने दूसरा स्वर्ण पदक जीता।
And now, Akarshita, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about International Day of Older Persons. Well, seniors are the backbone of a society, shouldering countless responsibilities while passing down invaluable wisdom and rich traditions to the younger generation. To honor their vital role, we celebrate the International Day of Older Persons on October 1st each year, that is October 1st, that is today, a day dedicated to recognizing the contributions of older citizens. This special occasion not only highlights the significance as societal leaders, but also sheds light on the challenges they face, reminding us all to appreciate and support the incredible legacy they create. And on December 14, 1990, the UN General Assembly made October 1st as the International Day of Older Persons. And the International Day of Older Persons was observed for the first time on October 1st, 1991.
अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वृद्धजनों की स्वास्थ्य, कल्याण और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन समाज में वृद्धजनों के योगदान को सम्मानित करने और उनके प्रति समर्थन और देखभाल की भावना विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1990 में इस दिवस की स्थापना की। इसे दुनिया भर में वृद्धजनों की चुनौतियों जैसे स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, सामाजिक एकाकीपन और आर्थिक असुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। इस दिन का लक्ष्य वृद्धजनों की गरिमा बनाए रखना और उनकी भलाई के लिए सामाजिक समर्थन सुनिश्चित करना है। और अभिषेक, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो संयुक्त परिवार समाप्त होते जा रहे हैं और इनके साथ ही वे अनौपचारिक सहायता ढांचा भी खत्म होता जा रहा है, जिससे बुजुर्गों को सहयोग मिलता था। क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक संयुक्त परिवार होता था तो वो जो इमोशनल डिपेंडेंसी होती थी कि वो कभी छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल ले रहे हैं और संयुक्त परिवार में रहने से उनको एक वातावरण मिलता था, उनको कभी अकेलापन नहीं लगता था।
जस्ट लाइक एज द यंग पीपल एड warmth, charm and joy into our lives, and so do the elderly, and the elderly bring the much needed wisdom and they provide us with guidance and they're very much needed in society and in families, isn't it?
Ji, aur in chunautiyon ko audyogikaran tatha aadhunikikaran ke sandarbh mein samajhna hoga, jiske karan parivar ke aakar, uske dhanche tatha iske margdarshak siddhanton par dushprabhav pad raha hai. Aur ye sachchai hai ki hum samay ko wapas nahi lauta sakte, parantu hame aise upay karne honge jo ki vayovriddhon tatha parivar ke yuva sadasyon ki paras परस्पर विरोधी मांगों के बीच संतुलन कायम कर रख सके। और आज इस बात की बहुत जरूरत है कि बुजुर्गों और बढ़ती उम्र से संबंधित मुद्दों को मुख्यधारा में लाया जाए और वयोवृद्धों की जरूरतों तथा उनकी अपेक्षाओं की समाज द्वारा उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।
सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉ वीरेंद्र कुमार टुडे स्टेटेड दैट पीपल नीड टू सेलिब्रेट चेरिश मोमेंट्स एंड ऑनर द विजडम रेजिलियंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओल्डर जनरेशन एड्रेसिंग अ सेलिब्रेशन इवेंट ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स 2024 न्यू दिल्ली। डॉ कुमार हाईलाइटेड द वाइटल रोल सीनियर सिटीजन्स प्ले इन शेपिंग द कम्युनिटी एंड एम्फसाइज दैट द डिग्निटी रिस्पेक्ट एंड वेल बीइंग मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड। The minister noted that recognizing the contributions of the older generation is essential for laying a strong cultural foundation for future generations. He added that the government is committed to the welfare of older people and plans to organize a large-scale event on International Day of Older Persons in schools next year.
एक दिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मना लेने से हमारे अपने परिवार के बुजुर्गों के प्रति सम्मान का भाव पूरा नहीं हो जाता, बल्कि हमारी जो पूरब की संस्कृति है, रोज याद करना, रोज सम्मान करना, रोज उनके खुशियों को शेयर करना, उनका हाथ पकड़ करके चंद क्षण उनके साथ में बैठ करके उनके साथ बात करने से हमारे परिवार के बुजुर्गों को एक आत्मीय संरक्षण का एहसास होता है, सुरक्षा का एहसास होता है। अपनी बातों को जब वो शेयर करते हैं बेटे के साथ, बेटी के साथ, अपने नाती नातिन के साथ में, तो जो खुशियां उनके भाव उनके अंदर आती हैं उसका अनुभव पर्व में वही अनुभव करते हैं।
कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने भी इस बात पर जोर दिया कि बुजुर्गों की देखभाल भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और इस परंपरा को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा उपहार उन्हें समय देना है। उन्होंने सभी से उनके साथ बिताए गए पलों को संजो कर रखने का आग्रह किया।
हमारे समाज के ये बुजुर्ग वास्तव में धरोहर है, हमारे पारंपरिक मूल्यों परंपरा और संस्कृति के लिए इनका हमेशा योगदान रहा है और रहेगा। और आज बदला हुआ भारत, चाहे सशक्त भारत हो, उसमें हमारे इन वरिष्ठ नागरिकों की भूमिका को कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
और अभिषेक, अगर बात करें वृद्धजनों की, तो उनके लिए नियमित स्वास्थ्य जांच अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे गंभीर बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सकता है और उनसे उन्हें बचाया जा सकता है।
एब्सोल्युटली सो। एंड हाउ डू यू सेलिब्रेट दिस डे? वेल आकर्षिता, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द एल्डरली इंडिविजुअल्स इन योर लाइफ, सच एज योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ओल्डर रेजिडेंट्स इन योर नेबरहुड, एंड ऑल्सो टेक देम फॉर लंच। Plan a long, leisurely lunch at the favorite eatery. Spend time chatting with them and listening to them, savoring the moment. Ensure they feel heard and cherished. Having a wholesome meal together is a wonderful way to celebrate this occasion. Indulge in good food and great conversations.
और अभिषेक, अगर देखा जाए तो आज औद्योगिक तकनीकी के क्षेत्र में देख रहे हैं कितनी ज्यादा जितने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उतनी ज्यादा जो बुजुर्ग हैं वो उससे अपने आप को कटा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि हम आज जो नए बच्चे हैं उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, क्योंकि उनके पास नए गैजेट्स हैं, नए वीडियो गेम्स हैं, तो उनको लगता है कि उनके दादा दादी तो इसको समझ ही नहीं पाते, तो हम उनसे क्या बात करें। तो इससे हम ये कहना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं घर में, वो अपने बुजुर्गों के साथ थोड़ा सा समय व्यतीत कर सकते हैं, बाहर वॉक पे जा सकते हैं, उनके साथ भी पढ़ सकते हैं, दादी नानी की कहानियां सुन सकते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने गैजेट्स से थोड़ा उन्हें रूबरू करा सकते हैं।
Yes, absolutely. I'd like to add here, Akarshita, that a blend of young and old is very much needed in every society, every family, every household. Just as much as the young are needed, so are the elderly, and this point cannot be emphasized more. So once again, I'd like to say a blend of young and old is what is needed. And on how to also celebrate this day, schedule a wellness visit for the elderly. The most promising way to show someone that they are loved is to make sure they're doing well. Book a wellness appointment for them. It will certainly be the best thing you can do for them today. Then take time to learn about the challenges faced by older individuals and explore how you can help. Sometimes the tiniest actions have the greatest impact. Know that the underlying mission of this day is to spend quality time with older adults. Don't let the lack of time or money or any other resources prevent you from participating in the International Day of Older Persons. Instead, just extend love and care to the elderly you care about.
और अभिषेक, अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, आपके दादा दादी हैं, उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करें और उनसे थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करें, थोड़ा सा बातचीत करें और उनकी भावनाओं को भी समझें। हमारा समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। इस वर्ष दिसंबर में चेन्नई में आयोजित होने वाले रॉयकिक साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए एक कार नकोबार के साइकिल चालक को त्रिवंतपुरम में भारतीय खेल प्राधिकरण के संस्करण देने की व्यवस्था की गई है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह विशेषकर कार निकोबार के आदिवासी साइकिल चालकों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश और इस द्वीप समूह का हमेशा सम्मान बढ़ाया है। द्वीप समूह के डेविड बेकम और देवोरा जैसे खिलाड़ियों ने कई पदक भी जीते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल में बेहतर अवसर प्रदान करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए तिरुवनंतपुरम के वेलोड्रोम में साई कार निकोबार के साइकिलिस्टों को प्रशिक्षण देने से पदकों की उम्मीद और बढ़ जाती है। पिछले दिनों राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियनशिप खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए अंडमान निकोबार राज्य ओलंपिक संघ की ओर से द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले साइकिलिस्टों के लिए चयन ट्रायल का आयोजन किया गया। श्री विजयपुरम स्थित नेताजी स्टेडियम के वेलोड्रोम में तकनीकी खामियों के चलते इन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना संभव नहीं था। भारतीय खेल प्राधिकरण की द्वीप समूह इकाई ने तिरुवनंतपुरम स्थित साई के निदेशक से द्वीपों के साइकिलिस्टों को उनके वेलोड्रोम में प्रशिक्षण देने के लिए अनुरोध किया था। इसके बाद ये सहमति बनी है। ये पहला अवसर है जब द्वीपों के साइकिलिस्टों को तिरुवनंतपुरम के भारतीय खेल प्राधिकरण के वेलोड्रोम में प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिक्रमा के लिए एस मुरली के साथ श्री विजयपुरम से मैं राकेश चंद्रलाल।
A seminar was organized by the Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal, TDSAT, on the theme Mechanism for Resolution of Disputes in Telecom, Broadcasting and Cyber Sectors in Goa on the 20th of September. This seminar holds significance in telecom industry in the wake of rising cyber crimes. Let's hear more from a Panaji correspondent, Tushar Jadhav.
A seminar on mechanisms for resolution of disputes in the telecom, broadcasting and cyber sectors has called for vigorous outreach activities by all stakeholders to create awareness among the public. It aimed to aware about availability of the adjudicating officers for the cyber crimes in the every states of India, as the public is largely unaware of the provisions to approach the AOs for the compensation.
The seminar organized in Narpora, North Goa was inaugurated by Justice Devendra Kumar Upadhyaya, Chief Justice, High Court of Bombay. In his inaugural address, Justice Upadhyaya highlighted the importance of tribunal and the origin in Indian legal system. He emphasized that the existence of subject experts along with judicial members in a tribunal strengthens the dispute resolution process in the given specialized sector.
Telecom Lawyers Association President Advocate Manjul Bajpayee, members of the local judiciary, office bearers of the TDSAT, lawyers and representative of the state government of Goa were also present at the seminar. Such seminars are important in the context of new emerging cyber crimes. Tushar Jadhav for Parikrama, Akashwani Panaji, Goa.
जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। शायद यही कारण है कि लोग अक्सर कहते हैं कि स्वच्छ जल से ही बेहतर कल संभव है। जल की स्वच्छता और संरक्षण को लेकर आज प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सिंह सहगल ने अन्य गणमान्यों के साथ वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका शीर्षक हमारी यमुना था।
हमारी यमुना वॉकथॉन में 500 से अधिक एनसीसी कैडेट अधिकारियों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य लोगों को यमुना नदी के प्रति उनकी सामूहिक जिम्मेदारी को याद दिलाना और नदी को साफ रखने के लिए जागरूक करना था। इस अवसर पर श्री सहगल ने कहा कि समाज की जिम्मेदारी है कि पूर्वजों ने जो स्वच्छ नदियां प्रदान की थी, उसी स्थिति में आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ नदियां प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि यह अभियान अपने संसाधनों को सहेजने और आम जन को जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया है। वॉकथॉन में शामिल एनसीसी कैडेट सुमित ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि रैली में शामिल लोग यमुना नदी को स्वच्छ करने के लिए प्रयासरत हैं।
एनसीसी के स्टूडेंट हैं हम, आज हमने रैली निकाली है यमुना साफ करने के रिगार्डिंग। ये जागरूक कर रहे हैं लोगों को, यमुना साफ होगी तो दिल्ली में पानी भी स्वच्छ आएगा।
एनसीसी कैडेट उमरा ने बताया कि वर्तमान में वातावरण दूषित है और इसके लिए सभी को आगे आना होगा।
जय हिंद, आई एम उमरा सदाकर। आज हमने सीपी पर एक स्केट परफॉर्म करी थी। यह दर्शाया था कि कैसे देश में लोग यमुना को गंदा कर, और हमें उसको नहीं करना चाहिए, जिससे वातावरण काफी दूषित हो रहा है और इससे हम सभी को काफी दिक्कत हो रही है। कैसे हम इसको बचा सकते हैं और कैसे हमें अपने छोटे छोटे कदम लेकर के इसको दूषित होने से रोक सकते हैं, और हमें एक एक कदम लेकर के अपनी यमुना को बचाना चाहिए।
स्वच्छ यमुना जागरूकता अभियान में वॉकथोन के अलावा नुक्कड़ नाटक और अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। परिक्रमा के लिए अभिषेक कपिल, आकाशवाणी दिल्ली।
The much anticipated Nehru Trophy boat race, one of the largest water sports events in India and the most prestigious one of Kerala, took place last week. Let's hear more from a Thiruvananthapuram correspondent.
The 70th edition of the Nehru Trophy boat race took place on 28th of September. Karichal Chundan emerged as the winner of the prestigious boat race. It is usually held on the second Saturday of August every year at the Punnamada Lake in Alappuzha district. This year, the race, which was originally scheduled for August 10th, was postponed following the Wayanad landslide tragedy. This year's race was officially inaugurated by Kerala's Tourism Minister P.A. Muhammad Riaz. A total of 19 snake boats or Chundan Vallams participated this year. Hundreds of spectators, including a notable number of foreign tourists, lined up in the banks of Punnamada Lake to witness the magnificent race with full enthusiasm. The origin of Nehru Trophy boat race date back to 1952 when India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru visited Kerala. Captivated by the sight of the majestic snake boats, Nehru reportedly jumped onto one of the boats, setting aside his security protocols. As a gesture of the appreciation for the time spent there, he later donated a silver trophy in the shape of a snake boat. Hence, the boat race was named after him. During this season, the area comes to life with ceremonial water processions and beautiful water floats. From the huge snake boats to small country rafts, the waters are under the control of expert oarsmen who put on a show that one can never forget. Parvati for Parikrama from Thiruvananthapuram.
Defence Minister Rajnath Singh today accorded a warm send-off to the 7,000-kilometer Vayu Veer Vijeta car rally from the National War Memorial in New Delhi. The rally will reach Thoise in Ladakh, where it will be formally flagged off to Tawang in Arunachal Pradesh to mark the 92nd anniversary of the Indian Air Force on the 8th of this month. Addressing the event, Defence Minister said that the Vayu Veer Vijeta car rally will raise awareness and increase knowledge about the Air Force, along with inspiring the youth.
इस रैली का उद्देश्य युवाओं को सेना के प्रति आकर्षित करना और वायु सेना के बारे में सही जानकारी फैलाना भी है। नौजवान केवल अफसर और कलेक्टर बनने का स्वप्न ही न देखें, बल्कि देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं सशस्त्र सेनाओं में शामिल होकर गौरव, अभिमान तथा देश सेवा के लिए शानदार जीवन जीने की भी बात सोची।
द रैली होल्ड्स अ स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर बोथ द इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन आर्म फोर्सेस। We have a special report from a correspondent.
The Vayu Veer Vijeta rally is a testament to the incredible journey and impression left by the Indian Air Force IAF over its 92-year-old history. The rally will be flagged off from Thoise in Ladakh, one of the world's highest altitude Air Force stations at 3,068 meters above mean sea level. The 22-day long car rally will finally culminate at Tawang in Arunachal Pradesh on 29th October. 52 air warriors, including women, will be behind the wheels during this mega car rally, which will also witness the participation of former Air Force chiefs in different legs. The air warriors will make 16 halts, which will comprise interactions with students in various colleges and universities. The aim of the rally is to raise awareness among the people about the glorious history of IAF, the deeds of valor of the air warriors in different wars and rescue operations, and attract the youth to serve the motherland. Adarsh Kumar for Parikrama, Akashwani News, Delhi.
और आइए अब चलते हैं आजादी के सफर की तरफ.
Annie Besant, a great social reformer and one of the most iconic exponents of the Indian freedom movement, was born on the 1st of October 1847 in London. She was involved in the free thought and radical movements led by Charles Bradlaugh, MP.
She advocated ideas which were ahead of the time, such as trade unions, national education, right for women to vote, and birth control. In 1889, Annie Besant joined the Theosophical Society, a religious movement based on Hindu ideas of karma and reincarnation. In 1893, she represented the Theosophical Society at the World Parliament of Religions in Chicago.
Nama nama Vasant Devi Jagat Vandite Prajvalite Jnana Jyoti Sakal Janahite.
She came to India in 1893 and fell in love with the land. She was associated with various causes including the emancipation of women, education, and most notably took part in the Indian freedom struggle. Once Mahatma Gandhi said about her that she awakened Indian people from their deep slumber.
Along with Lokmanya Tilak, she co-founded the Home Rule League in 1916, which aimed to campaign for democracy in India and dominion status within the empire.
In June 1917, when she was arrested by the British Empire, it was vehemently opposed by both Congress and the Muslim League. When Besant was freed in September 1917, she was welcomed by the crowds from all over India. Later, she was elected as the first woman president of the Indian National Congress in December 1917.
She established Banaras Hindu University in 1916 with the assistance of Maharaja of Darbhanga Rameshwar Singh, Maharaja of Banaras Prabhu Narayan Singh, Madan Mohan Malviya and Sundarlal.
In 1898, later, she also helped in establishing the Hyderabad Sindh National Collegiate Board, Mumbai, India, in 1922.
Raghupati Venkataratnam Naidu was born on 1st of October 1862 in Machilipatnam in Andhra Pradesh. As his father, Raghupati Appaya Naidu worked as subedar in the army. He lived in Chandrapur. This helped him gain knowledge of Hindi, Urdu and Persian languages.
He graduated from Madras Christian College. He continued further education to complete MA and LT from the University of Madras. He founded the Social Purity Association in 1891 to train people as honest citizens.
He worked for the eradication of untouchability and uplift of scheduled castes and founded an orphanage and a hostel for them. He strived for the abolition of the Devadasi system in Andhra and succeeded to a considerable extent. He promoted widow remarriages and encouraged women's education.
He promoted Brahmo Samaj movement in Andhra. All the above social reforms have led to him being described as the second great social reformer of Andhra after Veera Salingam Panthulu. He breathed his last on the 26th of May 1939.
On this day, Hridaynath Kunzru was born in the year 1887. He was an Indian freedom fighter and public figure. He was also a seasoned parliamentarian, serving in various legislative bodies at the provincial and central level for nearly four decades.
He was a member of the Constituent Assembly of India from 1946 to 1950 that drew up the Constitution of India. He was also keenly interested in the international affairs and co-founded the Indian Council of World Affairs and the Indian School of International Studies. He breathed his last on the 3rd of April, 1978.
In business news today, domestic benchmark indices Sensex and Nifty ended on a flat note in range-bound session today. At close, the Sensex fell 33 points and was marginally down by 0.4% to close at 84,266, while the Nifty slipped 13 points with a slight loss of 0.5% to settle at 25,796.
तो अब बारी खेल की. भारत ने कानपुर क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर दो मैच की श्रृंखला 2-0 से जीत ली है. भारत को दूसरी पारी में जीत के लिए 95 रन का लक्ष्य मिला था. मेजबान टीम ने यह लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया. और अब समय है अपने व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस.
एंड वी स्टार्ट विद थॉमस लियो क्लांसी जूनियर हु पास्ड अवे ऑन दिस डे इन 2013. ही वाज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट. ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज टेक्निकली डिटेल्ड एस्पियनाज एंड मिलिट्री साइंस स्टोरी लाइन्स सेट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कोल्ड वॉर. 17 of his novels have been bestsellers and more than 100 million copies of his books have been sold. And also Akarshita Elvin Brooks White passed away on this day in 1985. He was an American writer. He was the author of several highly popular books for children, including Stuart Little in 1945, Charlotte's Web 1952, and The Trumpet of the Swan in 1970. In 2012 survey of school library journal readers, Charlotte's Web was ranked first in the poll of the top 100 children's novels. White also was a contributing editor to the New Yorker magazine and the co-author of The Elements of Style, an English language style guide.
आज भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध शायर और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की जयंती है। इनका पूरा नाम असरार उल हसन खान था। मजरूह सुल्तानपुरी ने चार दशक से भी ज्यादा अपने लंबे सिने करियर में करीब 300 फिल्मों के लिए लगभग 4000 गीतों की रचना की है। मजरूह सुल्तानपुरी के सिने करियर में उनकी जोड़ी संगीतकार एसडी बर्मन के साथ भी खूब जमी। एसडी बर्मन और मजरूह सुल्तानपुरी की जोड़ी वाली फिल्मों में पेइंग गेस्ट, 9 to 11, सुलावा साल, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी और अभिमान जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। मजरूह सुल्तानपुरी के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए वर्ष 1993 में उन्हें फिल्म जगत की सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
सब है पता सुनता है तू, मन की सदा दे तू मुझे। सब
Dame Julie Andrews, born Julia Elizabeth Wells, was born on this day in 1935. She is an English actress, singer and author. She has garnered numerous accolades throughout her career, spanning over 8 decades. She was made a dame by Queen Elizabeth II in 2000. She starred in the musical film The Sound of Music in 1965, playing Maria von Trapp, and winning the Golden Globe Award for the Best Actress, Motion Picture, Comedy or Musical. Let's listen in to the song Maria from the film The Sound of Music.
She's always late for everything, except for every meal. I hate to have to say it, but I very firmly feel Maria's not an ass.
आज सचिन देव बर्मन की जयंती है। वे हिंदी और बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार और गायक थे। सचिन देव बर्मन को एसडी बर्मन के नाम से भी जाना जाता है। बर्मन ने अपने करियर की शुरुआत 1930 के दशक में कलकत्ता में संगीत निर्देशक के रूप में की थी। एक गायक के रूप में उनकी पहली रिकॉर्डिंग बंगाल के क्रांतिकारी संगीतज्ञ कवि काजी नजरुल इस्लाम की एक रचना थी। वे 1944 में मुंबई आए हम है राही प्यार के, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, है अपना दिल तो आवारा जैसे संगीत के जरिए एसडी बर्मन आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। उन्हें पद्मश्री, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आइए सुनते हैं उनके गानों का ये मेडले।
कौन है वो अपनों में कभी ऐसा कहीं होता है, ये तो बड़ा धोखा है।
अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने
लुटे कोई मन का नगर।
आज विलुपुरम चिनैपिल्लई गणेशन की जयंती है। मुख्य रूप से शिवाजी गणेशन के नाम से वे प्रसिद्ध हैं। तमिल सिनेमा की प्रमुख हस्तियों में से एक शिवाजी गणेशन संवाद अदायकी से दर्शकों को मुग्ध कर देने वाले सुपरस्टार थे। शिवाजी गणेशन ने अपने करीब 5 दशक के लंबे फिल्मी सफर में लगभग 300 फिल्मों में काम किया। 1970 में प्रदर्शित हिंदी फिल्म धरती में भी उन्होंने अभिनय किया।
Shivaji Ganeshan is acknowledged as one of the greatest Indian actors of all time and among the most imitated one by other actors. In 1997, Ganeshan was conferred the Dada Saab Phalke Award, the highest honor for films in India. He was also the first Indian actor to be made a Chevalier. In addition, he received the National Film Award Special Jury, 4 Filmfare Awards South and 3 Tamil Nadu State Film Awards. Ganeshan is remembered as an iconic figure of Tamil cinema. Upon his death, the Los Angeles Times described him as a Marlon Brando of South India's film industry.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।